सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो नमो यारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येशिं पढमं भवै मङ्गलं पढमं भवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं
पंच परमेष्ठी भगवान
की जय
अहिंसा परमो
धर्म की जय
आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज
की जय
परम पूज्य नियम सागर
महाराज की जय
मुनि संघ की जय
आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जो समय पर आए हैं उन्हीं को समझ में आ सकेगा, जो बीच में आकर के बैठेंगे ऊपर से उड़ेगा। आज विषय बड़ा सूक्ष्म है, गहरा है, डीप है। संसारी प्राणी के ज्ञान को और केवल भगवान के ज्ञान को, इन दोनों के बीच में तुलना है। संसारी प्राणी का ज्ञान क्षयोक्षमिक होता है, अल्पज्ञ कहलाता है संसारी प्राणी, यानी अल्प को जानने वाला। क्षयोक्षमिक ज्ञान, चाहे वह मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान भी क्यों न हो और मनःपरे ज्ञान भी क्यों न हो, इसमें दो परोक्ष हैं और दो प्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष हैं वो एक देश प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष नहीं है, और जो परोक्ष हैं वो परोक्ष ही हैं, क्योंकि किसी भी परोक्ष पदार्थ को प्रत्यक्ष में जानने की क्षमता उनकी नहीं होती। और जब भी वो दोनों ज्ञान पर पदार्थों को जानते हैं, ऐसे दो ज्ञान जो परोक्ष कहलाते हैं वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। ये इंद्रियों के ऊपर डिपेंड होकर के जानते हैं। और एक देश प्रत्यक्ष कहलाने वाले दो ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपरे ज्ञान, ये दोनों द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के, भव की मर्यादा को लेकर के ये सीमित को जानते हैं, असीम को नहीं जान पाते। ये संसार में जितने द्रव्य हैं, अनंत अनंत द्रव्य हैं, प्रत्यक्ष में भी हैं, परोक्ष में भी हैं, बहुत सारे हैं, अनंत हैं, लेकिन अनंत को जानने की क्षमता एक देश प्रत्यक्ष ज्ञानों के भीतर नहीं है। और ऐसे ज्ञान दो हैं, एक अवधि ज्ञान और एक मनःपरे ज्ञान। फिर इसके क्षयोपशम के आधार से इसके भी भेद बन जाते हैं। जिस जीव को जितना क्षयोपशम है उतना ही वह अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जान पाता है, ज्यादा नहीं जान पाता। जो उपलब्ध हुआ है ज्ञान क्षयोपशम के द्वारा उतना ही पर वस्तुओं को प्रत्यक्ष जानेगा, देखेगा और कहेगा। परंतु जो जानता है और देखता है और कहता है और वो है एक देश प्रत्यक्ष है, उस एक देश प्रत्यक्ष के ज्ञान को कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती, किसी मन की आवश्यकता नहीं होती। विदाउट इंद्रिय और विदाउट मन के द्वारा भी वे ज्ञान जान सकते हैं और बता सकते हैं कि परोक्ष में ऐसी ऐसी बात है और ये निश्चित है, जाके देख लेना, ये ऐसा ही है, तो ऐसा ही रहता है। किंतु इसमें भी कुछ मर्यादा है, एक सीमा है। इंद्रियों के आलंबन के बिना ही जानता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सबको जान ले। सबको जानने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वो क्षयोपशमित है, कर्माधीन है। कर्म जितना रास्ता छोड़ेगा उतना ही जान पाएगा, कर्म जितना ढका रहेगा उतना वह जान नहीं पाएगा, पर जानेगा इंद्रियों के बिना और मन के बिना। ऐसे दो ज्ञान हैं जिनको हम अवधि ज्ञान और मनःपरि ज्ञान कहते हैं। ये अवधि ज्ञान और मनःपरि ज्ञान क्षयोपशमिक ही हैं, क्योंकि इनका सद्भाव कर्म के उदय में और कर्म के उपशमन में ही होता है। कुछ कर्मों का उदय भी रहता है, कुछ कर्मों का उपशमन भी रहता है, इसलिए ये क्षयोपशम ज्ञान कहलाते हैं। क्षयोपशम का मतलब कुछ कर्मों का क्षय भी रहता है इसमें, कुछ कर्मों का उपशमन भी रहता है और कुछ कर्मों का उदय भी रहता है। तो देशघाती का उदय, सर्वघाती का उपशमन और उन्हीं सर्वघाती उपशमित प्रकृतियों का एक देश उदयाभावी क्षय, उन्हीं प्रकृतियों का सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय भी रहता है। इस प्रकार क्षयोपशमी ज्ञान की परिस्थिति ये होती है। परंतु जो परोक्ष ज्ञान है वो तो परोक्ष ज्ञान है, वो भी क्षयोपशमिक है, लेकिन परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। यदि हम सभी लोगों के पास जो आज ज्ञान है वो दो प्रकार का ही है, अवधि ज्ञान किसी के पास नहीं है, न ही मनःपरि ज्ञान है। ये परोक्ष दो ज्ञान ये इंद्रिय के बिना जानते नहीं। इनको आंख चाहिए सुनने के लिए, कान चाहिए इनके लिए, चखने के लिए रसनेन्द्रिय चाहिए, चक्कर के ही बता पाएगा कौन सा रस है, ये मीठा है क्या, कड़वा है क्या, क्या है, चखे बिना नहीं बता सकता। हाथ में पकड़ करके आप बता रहे हैं ये दूध में शक्कर डला हुआ है कि नहीं, मीठा है क्या, फीका है, शक्कर डाला हो तो मीठा। आप दिखा करके पूछ रहे हैं कि दूध मीठा है या फीका है, तो मति ज्ञान स्वरूप ज्ञान तो बता नहीं सकेंगे। अवधि ज्ञान से पूछो ये दूध मीठा है क्या फीका है, तो अवधि ज्ञान बता देगा, तुमने तो मीठा डाला है अभी और मेरे सामने नहीं डाला, उधर डाल के लाए हो, ये भी जानता हूं कि उधर से डाल के लाए हो। मैं अवधि ज्ञान लगा करके देख रहा था कि तुम मीठा डाल रहे हो और आकर के तुम पूछ रहे हो कि दूध मीठा है क्या फीका है, तो मैं तो जानता हूं वो मीठा ही है। अरे तुमने तो पिया नहीं और कुछ देखा नहीं, कैसे बता दिया, मुझे पीने की जरूरत नहीं है। वो ज्ञान कहता है मुझे पीकर देखने की जरूरत नहीं, पिए बिना भी मैं बता सकता हूं। इसको कहते हैं अवधि ज्ञान। ऐसा एक मनःपरि ज्ञान भी होता है, वो भी एक अपने आप में विशिष्ट ज्ञान होता है। वो ज्ञान केवल बाहरी विषय को ही नहीं बताता, परंतु भीतरी विषय को भी बताता है। आपके मन में क्या विचारधारा चल रही है, आपके मन में क्या विचारधारा चलने वाली है भविष्य में, उसको भी बता सकता है, परंतु सीमित समय को लेकर के, सीमित काल, सीमित द्रव्य, सीमित क्षेत्र, सीमित भाव, इसकी मर्यादा के साथ बताएगा मनःपरि ज्ञानी। और मनःपरि ज्ञान तो संयम अवस्था में ही प्रकट होता है, मुनियों को ही प्रकट होता है, संयमी मुनियों को। और अवधि ज्ञान ये कॉमन है, संयमी असंयमी दोनों को प्राप्त होता है। हो सकता है ऐसा? स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं है, नरक में नारकी जीव नपुंसक है, उनको हो रहा है तो स्त्री को नहीं होगा। नरक में नारकी जीव नपुंसक होते हैं सरे, वहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद नहीं है, मालूम है कि नहीं? ये नपुंसक पर्याय में भी जब अवधि ज्ञान हो सकता है तो फिर स्त्री पर्याय में तो होता ही है, तो लिंग भेद नहीं है। परंतु मन परे ज्ञान ये पुरुष पर्याय में ही होगा, केवल ज्ञान ये पुरुष पर्याय में ही होगा, स्त्री पर्याय में स्त्रियों को मन परे ज्ञान नहीं होता और केवल ज्ञान नहीं होता, दो ज्ञान नहीं होते। किसको? द्रव्य स्त्री, द्रव्य स्त्री, द्रव्य से शरीर से जो स्त्री पर्याय है उस पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होगा और मन परे ज्ञान नहीं होगा। कारण क्या है? उन ज्ञानों को उत्पन्न करने लायक विशुद्धि और उसके योग्य शरीर और संयम, लेशा, कषाय आदि की मंदता इत्यादि, इनको उपलब्ध करना संभव नहीं है। इस कारण से स्त्री पर्याय ने दो ज्ञानों का निषेध किया है। पर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन दो ज्ञानों, तीन ज्ञानों का निषेध नहीं किया है, ये हो सकता है। और यही तो तीन ज्ञान मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। यदि हमारा गुणस्थान पहला है तो ये तीनों ज्ञान मिथ्या रहेंगे, और इन तीनों ज्ञानों की उपस्थिति के काल में, यानी ये जब प्राप्त हैं उस काल में, हमने यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करके चौथा आदि ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त कर लिया तो ये तीनों ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएंगे। सम्यक मति ज्ञान, सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, इस प्रकार सुज्ञान कहलाएंगे। और ये जो मनःपरे ज्ञान है ये मिथ्यात्व अवस्था में पहले गुणस्थान में उत्पन्न नहीं होता, ये केवल छठे सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनियों को ही प्रकट होता है। मुनियों को, मुनि अवस्था में, संयम अवस्था में प्रकट होता है। तो संयमी के पास तो नियम से छठे गुणस्थान में सम्यक्त्व तो होता ही है, हाँ सम्यक्त्व तो होता ही है। सम्यक दर्शन के साथ साथ क्या चाहिए? संयम भी चाहिए। कौन सा ज्ञान प्राप्त करने के लिए? मन परे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। सम्यक दर्शन ही नहीं चाहिए, सम्यक ज्ञान ही नहीं चाहिए, उस सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ संयम जुड़ा हुआ हो तो प्रकट हो सकता है। हो ये गारंटी नहीं, हो ये नियम नहीं, किंतु उसके त्याग और तपस्या के बल पर डिपेंड है कि यदि वो अपनी विशुद्धि को मनःपर्याय ज्ञान प्राप्त करने योग्य या मनःपर्याय ज्ञान प्राप्त होने योग्य विशुद्धि को, संयम को बढ़ाएगा तो मनःपर्याय ज्ञान भी होगा। भाव स्त्री तो पुरुष पर्याय में भी भाव स्त्री का उदय होता है, उसी को है ना, तीन वे है ना, तीन अकषाय, तीन कषाय, चार कषाय और तीन अकषाय। अकषाय मतलब वो वेद, अकषाय नौ कषाय, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये कर्म जनित जो भाव होते हैं उसको भाव वेद कहते हैं। इस कर्म के उदय में जो परिणाम होते हैं जीव के उसको भाव वेद कहते हैं, इसको द्रव्य वेद नहीं कहते। द्रव्य वेद शरीर से होता है, नाम कर्म की विशेषता की देन होती है शरीर। हाँ हाँ, भाव भाव वेद के साथ विशुद्धि हो सकती है, परंतु मनःपरे ज्ञान के साथ नहीं कहा है। अवधि ज्ञान के लिए ठीक है, एक देश प्रत्यक्ष के लिए, अवधि ज्ञान के साथ भाव पुरुष के पुरुष वेद ही रहता है। भाव पुरुष वेदी को ही मनःपरे ज्ञान प्राप्त होगा। यदि उस समय में भाव से यदि नपुंसक वेद का उदय चल रहा हो या स्त्री वेद का उदय चल रहा हो, उस काल में मनःपरे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ये भी ध्यान में रखना है। परंतु एक देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान के लिए यह कोई आवश्यकता नहीं है। द्रव्य से और भाव से कोई भी वेद चल सकता है, और केवल ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उस समय तो सवाल ही नहीं, क्योंकि तीनों ही कर्मों को नष्ट करके, यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों कर्मों को नष्ट करके ऊपर उठा हुआ होता है, हाँ, ये अवेदी को ही प्राप्त होता है। परंतु द्रव्य से देखें, केवल ज्ञान द्रव्य वेद से पुरुष वेद को ही प्राप्त होगा। तो द्रव्य वेद कहां तक रहता है? भाव वेद नवे गुण स्थान तक, हाँ, क्योंकि कर्म का उदय नवे गुण स्थान तक होने से भाव वेद भी नवे गुण स्थान तक होता है। और द्रव्य वेद यानी पुरुष शरीर को द्रव्य वेद कहते हैं, जो नाम कर्म की देन है। नाम कर्म के उदय से शरीर की संरचना की विशेषता है, इसको द्रव्य वेद कहते हैं। द्रव्य वेद का अस्तित्व 14वें गुण स्थान तक है। शरीर जब तक है तब तक वो पुरुष तो है, क्या पुरुष शरीर बदल करके स्त्री शरीर बनेगा? तो इसी को द्रव्य वेद कहते हैं। द्रव्य वेद नाम कर्म की विशेषता से उत्पन्न होता है, और भाव वेद वो अकषाय के उदय से उत्पन्न होता है। तीन, तो यहां पर मनः परे ज्ञान की विशेषता हम बता रहे थे। मनः परे ज्ञान एक संयमी महाव्रती पुरुष वेदी, भाव से पुरुष वेदी, द्रव्य से भी पुरुष पर्याय, इन्हीं को उत्पन्न होता है। द्रव्य से भी पुरुष चाहिए और भाव से भी पुरुष वेद का उदय चाहिए, उस काल में होगा। तो इस मनः परे ज्ञान के काल में मनः परे ज्ञान जिनको उत्पन्न हुआ वो क्या जानता है? मनः परे ज्ञानी जीव तो दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं मन को भी पकड़ लेता है। हाँ, आप मन में क्या थिंकिंग कर रहे हैं, क्या क्या विचार चल रहा है, उनको ग्रहण कर लेता है, और बाद में वो आपके कहे बिना और कुछ पूछे बिना भी कह सकता है, इधर आओ, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ये नरक बंद के कारणीभूत विचार है, ऐसा विचार कभी मत किया करो, ऐसा उपदेश दे सकते हैं वो, ऐसी दया कर सकते हैं वो, मन के विचारों को जान लेते हैं। और आपको आश्चर्य लगता है, मैंने तो बहुत बुरा विचार किया था और इनको कैसे पता चल गया? तो कहते हैं ना, भगवान से कोई बात छिपाई नहीं जा सकती, भगवान सब जगह होते हैं, भगवान सब जगह होते हैं। तो भगवान ही सब जगह नहीं होते, मुनि भी सब जगह होते हैं, साधु भी सब जगह होते हैं, उनके परिधि में यानी क्षेत्र परिधि भी होती है, उस क्षेत्र के भीतर हो तो वो मन का बात जानेंगे, क्षेत्र मर्यादा भी है, और उस क्षेत्र के बाहर हो तो मनः परे ज्ञानी नहीं जान पाएंगे। जैसे इस कमरे में है तो मुझे कमरे के बाहर का कुछ पता नहीं चलता, कौन क्या विचार कर रहा है, तो हमारा क्षोभ उतना ही है, ज्ञान अभी उतना ही विकसित हो चुका है, ज्यादा विकसित होगा तो रास्ता तक जानेगा, और विस्तृत होगा तो पूरा महाराष्ट्र को जानेगा, और विस्तृत होगा पूरा भारत को जानेगा, और विस्तृत होगा पूरा आर्यखंड को जानेगा, मलेच खंड को भी जानेगा, फिर विदेश क्षेत्र को भी जानेगा, फिर जानते जानते जम्बू द्वीप को जानेगा, जानते जानते फिर ढाई द्वीप को जानेगा पूरा। तो उसका विस्तार जैसा कर्म का क्षोभ बढ़ेगा, ज्ञान का भी विकास होगा, ऐसा विस्तृत होता जाता है वो। अवधि ज्ञान भी इसी प्रकार है, वह विस्तृत होता जाता है, विस्तृत होता जाता है, परंतु प्रारंभ में जितना उत्पन्न होता है, अवधि ज्ञान के संबंध में बता रहा हूं, प्रारंभ में जितना उत्पन्न होता है उतना ही रह सकता है, ऐसा भी एक अवधि ज्ञान है, न घटेगा न बढ़ेगा, ऐसा भी एक होता है, अंतिम समय तक जितना था उतना ही रहेगा। और एक अवधि ज्ञान ऐसा भी होता है, जितना प्राप्त हुआ है उससे बढ़ता 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 जाएगा, चरम सीमा तक जाएगा, उसकी भी अपनी एक चरम सीमा है, वहां तक जाएगा। एक अवधि ज्ञान ऐसा भी होता है, शुरू होते समय बहुत बड़ा बढ़ चढ़ करके प्राप्त हुआ और बाद में घटता हुआ आया और समाप्त हो गया, ऐसा भी होता है। घटता हुआ भी आ सकता है, बड़ा हुआ घटता हुआ भी आ सकता है। और कोई ऐसा होता है छोटे रूप में प्रकट हो गया और बढ़ता हुआ भी जा सकता है। तो इनको क्या कहते हैं, वर्धमान नाम देते हैं। वर्धमान यानी बढ़ता हुआ जाने वाला, ही मान घटता हुआ आने वाला, और स्थिर अवस्थित, अवस्थित अवधि ज्ञान, अनवस्थित ऐसा भी एक अवधि ज्ञान है। वो घट बड़ा हुआ घटता ही है ऐसा नहीं, वो घट भी सकता है और पुनः वापस बढ़ भी सकता है, तो ये अनवस्थित कहलाता है। इस प्रकार अवधि ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं और उसमें वह अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ही कहलाता है, परंतु एक देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष इसलिए कि उसका जितना कैपेसिटी है, पावर है, उसके अनुरूप जानेगा और देखेगा और बताएगा, इस प्रकार होता है। तो हम टाइम से चाहिए पड़ेगा आज ज्यादा, तो हम अब केवल ज्ञान के संबंध में सोचते हैं। केवल ज्ञान भी एक ज्ञान है जो अपने भीतर है वो, परंतु कर्मों के कारण से ढका हुआ है, यानी नष्ट है वो पूर्णतः, वह उसका विनाश ही हुआ है ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि जो कुछ ज्ञान की शक्ति है या जो कुछ भी आज हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है वो केवल क्षयोपशमिक है। क्षयोपशमिक भी एक ज्ञान की ही एक पर्याय है और क्षायिक भी एक ज्ञान की ही पर्याय है। तो क्षायिक ज्ञान तो अंश मात्र में भी हमारे पास नहीं है। क्या है? कोई केवल ज्ञान की किरण केवल ज्ञान किरण रूप में प्रकट हो गया तो वो क्षयोपशमिक हो गया है? थोड़ा सा जानने लगा और फिर बाद में सभी किरण जब प्रकट हो गए तो सबको जानने लगा, ऐसा हो जाएगा। तो ज्ञान कभी भी केवल ज्ञान, एक ही ज्ञान, केवल ज्ञान कभी किरण के रूप में प्रकट नहीं होता। बाकी ज्ञानों को कहो किरण के रूप में प्रकट होता है, क्योंकि वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। जितना कर्म का बादल आ गया, छा गया, उतनी ही धूप आ रही है, बाकी जगह छाया है। जहां से फटा हुआ बादल है वहीं से सूर्य किरण निकल रहे हैं, धरती तक उतनी ही धूप आ रही है। ऐसा ज्ञान तो क्षयोपशमिक ज्ञान है, परंतु केवल ज्ञान ऐसा नहीं। केवल ज्ञान को ढाकने वाले जो कर्म है वो ऐसे कर्म है जो पूर्ण रूप से ही ढाके रखते हैं जीव को। जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक पूर्ण रूप से ढके रहते हैं कर्म। कर्म बादल है और केवल ज्ञान सूर्य है। कर्म बादल है और केवल ज्ञान सूर्य के समान है। तो कर्म के बादल ऐसे छा जाते हैं, छा जाते हैं क्या, वो अनादि से छाए हुए ही हैं। कब से आए ये मत पूछो, ये बादल कब से आए ये मत पूछो, प्रति समय बादल उठ रहे हैं और उसके ऊपर छा रहे हैं। और जो बादल पूर्व के थे उसमें से निकल तो जाते हैं लेकिन किरण नहीं आ सकता एक भी। आने वाले बादल सदा सतत रहते और उसको पूरी तरह से ढक लेते, पर पूर्व के जो बादल के कण थे वो अपने आप में निकल भी जाएंगे, क्योंकि कोई भी कर्म आने के बाद स्थायी नहीं होता, वो जाता भी है, वो जाता भी आता है तो जाता भी है, वो सविपाक निर्जरा है। कर्म की जो काल मर्यादा होती है, स्थितिबंध होता है, वो स्थितिबंध के अनुसार वो फल दे करके निकल भी जाता है, वो सविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा करनी पड़ेगी अपने को, यानी उन बादलों को अपने पुरुषार्थ पूर्वक पूर्णतः नष्ट करने का कोई प्रक्रिया, कोई विधान, कोई ऐसा जो पद्धति क्रम है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और वह पद्धति क्या है, तो कहते हैं धर्म को स्वीकार करो, धर्म के शरण में आओ। कौन सा धर्म? रत्नत्रय स्वरूप धर्म। सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, सम्यक चारित्र को प्राप्त करो, ये रत्नत्रय है। और इसके उपरांत तप को भी स्वीकार करो, तपसा निर्जराचय। केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अविपाक निर्जरा करना है, केवल ज्ञानावरणी कर्म को नष्ट करना है, प्रति समय असंख्यात गुणित असंख्यात गुणित प्रमाण में उनको निर्जरा करके निकाल देना है तो ऐसा करना है। तो ऐसा करने के लिए क्या चाहिए? चार चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। हाँ, किसी में भी अंधविश्वास नहीं चलेगा, तभी केवल ज्ञान होगा। आपको भगवान बनने की जब शक्ति है तो अंधश्रद्धा को त्यागना तो पड़ेगा ना। तो अंधश्रद्धा को त्यागना और सम्यक ज्ञान को पाना, यथार्थ ज्ञान को पाना, यह जरूरी है। तो इस यथार्थ ज्ञान आ गया तो वो सम्यक ज्ञान, और उस तत्व के प्रति, उस यथार्थ मार्ग के प्रति, उस यथार्थ विषय के प्रति जो श्रद्धा होती है वो सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन और ये सम्यक ज्ञान, ये दोनों ही ये मतिश्रुत है। सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? अवधि ज्ञान प्राप्त करता है, क्या मनपरे ज्ञान प्राप्त करता है, क्या केवल ज्ञान प्राप्त करता है, क्या मति ज्ञान श्रुत ज्ञान प्राप्त करते ही है? जो मिथ्या से सम्यक हो सकते, जो मिथ्यात्व रूप में पहले से थे वो सम्यक रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। हाँ, कुमति कुश्रुत ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पाना संभव है। यानी कुमति ज्ञानोपयोग, कुश्रुत ज्ञानोपयोग, ये दोनों मिलकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। केवल ही भगवान को वाणी को सुनेंगे जो यथार्थ है, शरणभूत है, विचार करने के लिए बिल्कुल समीचीन है, फिल्टर है, उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे और पकड़ करके उसका चिंतन मनन करेंगे तो यथार्थ श्रद्धा की भी उपलब्धि होगी और यथार्थ ज्ञान का भी लाभ होगा। तो श्रद्धा सम्यक दर्शन, ज्ञान सम्यक ज्ञान, ये दोनों जो प्रकट होते हैं मति और श्रुत ज्ञान को ही प्रकट होते हैं। अवधि ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास पुरुषार्थ वो नहीं करता। पुरुषार्थ करने वाला तो श्रुत ज्ञान ही है, इसमें मति ज्ञान को भी छोड़ दो, मुख्य रूप से श्रुत ज्ञान ही मुख्य माना जाता है, क्योंकि प्रयत्न और पुरुषार्थ चिंतनशील और तर्क यही करता है, और वितर्क श्रुतम इसका नाम भी है। ये वितर्क करता है, न्याय कर सकता है, शोध सकता है, छान सकता है, फिल्टर कर सकता है, ये काम करता है। और मति ज्ञान क्या है? आपको फिल्टर करने के लिए जो भी जिनेंद्र भगवान के सूत्र चाहिए मैं आपको दे सकता हूं, प्रदान कर सकता हूं। मति ज्ञान धारणा मति ज्ञान, जिसके भीतर द्वादशांग वाणी संपूर्ण द्वादशांग के सूत्र समाहित हो गए हैं, जिस कारण से केवली द्वादशांग श्रुत केवली कह रहे कहलाते हैं। तो द्वादशांग श्रुत केवली को श्रुत केवली कहा, द्वादशांग मति ज्ञानी क्यों नहीं कहा? धारणा मति ज्ञान में सारे सूत्र स्मरण में रहते हैं, उस धारणा मति ज्ञान रूप मेमोरी कार्ड में सारा का सारा भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान सूत्र उपलब्ध रहते हैं, तो फिर मति ज्ञान को द्वादशांग मति ज्ञान क्यों नहीं कहा, द्वादशांग श्रुत ज्ञान कहा? तो वहां पर श्रुत की प्रधानता है, क्योंकि जहां श्रुत ज्ञान के मेमोरी कार्ड में समस्त द्वादशांग के सूत्र उपलब्ध रहेंगे वहां उनको चिंतन करके भाव श्रुत को उत्पन्न कराने की कैपेसिटी और भाव मति ज्ञान को उत्पन्न कराने की कैपेसिटी ये श्रुत ज्ञान के पास होता है, क्योंकि वितर्क श्रुतम, श्रुत ज्ञान वितर्क वाला होता है, क्योंकि वो विचार करने की शक्ति कैपेसिटी क्षमता रखता है। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में ज्यादा से ज्यादा काम में आता है श्रुत ज्ञानोपयोग। ये ज्ञानोपयोग भगवान की वाणी को चिंतन करने में लिए तल्लीन हो जाए और हे उपाधि को समझ करके उपाधि भूत तत्व को ग्रहण कर ले, श्रद्धान कर ले, तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये किस ज्ञान के पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त होता है। तो श्रुत ज्ञान के पुरुषार्थ के द्वारा, श्रुत ज्ञान जब श्रुत ज्ञानोपयोग जब अपना पुरुषार्थ लगाएगा तो उस समय सम्यक दर्शन ज्ञान की उपलब्धि होती है। अब हम केवल ज्ञान के ऊपर जरा आते, कि मुख्य विषय वो है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, मनःपरे ज्ञान, देश प्रत्यक्ष, सीमित द्रव्य, सीमित क्षेत्र सीमित काल के विषयों को वो जानने वाला, सीमित भावों को जानने वाला। परंतु केवल ज्ञान ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष होने से अनंत द्रव्यों को अपना विषय बना सकता है, अनंत द्रव्यों को अपना विषय बना सकता है। जैसे सीमित द्रव्यों को मना परिज्ञान अवधि ज्ञान अपना विषय बना सकते हैं, वैसे केवल ज्ञान इस लोक में अलोक में जितना भी द्रव्य है छहों द्रव्यों को विषय बना सकता है और पूर्ण कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ऐसा केवल ज्ञान मोहिनी कर्म को नष्ट करने के उपरांत प्राप्त होता है, परंतु मोहिनी कर्म के नष्ट होने के उपरांत तत्काल प्रकट होता है ऐसा मत समझो। मोहिनी कर्म को नष्ट करने के उपरांत जीव को ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म को नष्ट करने की क्षमता उत्पन्न होती है। अंतराय कर्म तब तक नष्ट नहीं होगा, ज्ञानावरणी कर्म तब तक नष्ट नहीं होगा, क्षय को प्राप्त नहीं होगा जब तक मोहिनी कर्म उदय में है। तो मोहिनी कर्म को संपूर्ण नष्ट करने के बाद मुनि महाराज क्या करते हैं, ग्यारहवें में नहीं जाते, बारहवें में जाते। नष्ट करने के बाद, नष्ट करने के बाद, उपशमन करने के बाद नहीं, नष्ट, क्षय, क्षय अभाव, सत्ता में कुछ भी नहीं रहा, उदय में भी कुछ भी नहीं रहा, उदय से भी खाली हो गया और सत्ता से भी खाली हो गया। ऐसा खाली होने के बाद जब वो बारहवें गुणस्थान में डायरेक्ट जाते हैं दसवें से, तो निर्मोही होते हैं, मोह रहित भाव वाले और मोहनी कर्म द्रव्य कर्म से रहित वाले जब हो जाते हैं तो बारहवें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। वो बारहवा गुणस्थान इतना इंपॉर्टेंट गुणस्थान है, वहां केवल अंतर मुहूर्त काल आपको ऐसे ही बैठना है। कैसे बैठना है, जब जैसा अभी बैठे हैं एकाग्र होकर के, वहां चंचल नहीं होना। और चंचल होना चाहो तो नहीं हो सकते, ये भी है बारहवें गुणस्थान में, क्योंकि चंचल हो जाएगा ध्यान से डिग जाए तो नीचे आएगा। तो जिसने मोहिनी कर्म को नष्ट किया है वो दसवें गुणस्थान में गिरेगा नहीं। बोलो नहीं, बोलो नहीं, इधर सुन लो, विषय छोड़ जाएगा। दसवें गुणस्थान से उठ के बारहवें में गए, बारहवें गुणस्थान में चंचल होगा ये शंका नहीं करना चाहिए। हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, केवल ज्ञान होगा क्या नहीं, ऐसी शंका मत करो, क्योंकि वहां पर चंचल होने वाला ही नहीं है। ग्यारहवें में जाएगा तो वो चंचल हो जाएगा। क्यों चंचल हो रहा है, मोहिनी कर्म सत्ता में है इसलिए वो होना ही पड़ रहा है। परंतु बारहवें में जो गए हैं वो चंचल इसलिए नहीं होते क्योंकि सत्ता में और उदय में दोनों तरफ मोहिनी कर्म नहीं है, मोह के वजह से ही चंचल रहता है ना। क्या मोह के बिना रहता है, ये सिद्ध है कि बारहवें गुणस्थान वाले चंचल क्यों नहीं होते, तो मोहिनी कर्म के न होने से, सत्ता में भी नहीं है और उदय में भाव भी नहीं है, रागादि भाव नहीं है, हाँ सर्वथा अभाव है इसलिए। तो अपन ध्यान शिविर में पहुंच जाते हैं, कौन सा ध्यान करते हैं आप वहां, मोहिनी कर्म उदय में है क्या नहीं है, है? ध्यान शिविर में आप लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अटेंड होते हैं कि नहीं, तो उस समय मोह छूटता है क्या, हम ये पूछ रहे हैं, नहीं छूटता, इसलिए तो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आप भगवान बने ही घर लौटते हैं, भगवान बने बिना ही घर भगवान बने बिना घर क्यों आए, ध्यान में गए थे और नहीं, आप ध्यानाभ्यास के लिए गए थे, जाना गलत नहीं है, जाना गलत नहीं, पर जाने का मुख्य उद्देश्य आपका यह होना चाहिए, तभी वो ध्यान शिविर में जाना सार्थक है, कि मुझे मोहिनी कर्म को नष्ट करना है, राग को नष्ट करना है, क्योंकि राग को नष्ट किए बिना केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, यह अकाट्य सत्य है। और यह पॉइंट ध्यान में रखकर के आप अगर जाते हैं, मुझे ध्यान सीखना है और ध्यान का अभ्यास करना है और ध्यान को बढ़ाना है, संस्कार डालना है ध्यान के ऊपर, ठीक है ना। आत्मा के ऊपर संस्कार ध्यान से डाला ही जाता है। ध्यान शिविर में जाना गलत नहीं है, आप कहीं भी जाओ, लेकिन वहां क्यों जाओ? एक ध्येय को रखो, मोह को कम करके आऊंगा। और ध्यान शिविर कम होते ही आपका मोह उदय में आता है, तो जाते ही क्यों? नहीं महाराज, उसी को नाश करने के लिए गया था, फिर लौट के क्यों आए? घर का मोह छोड़ना चाहिए था। अरे ध्यान इतना आनंदकारी है तो घर क्यों जाऊं मैं, ऐसा विचार क्यों नहीं आया? और आना चाहिए, और वहीं पर वैराग्य होना चाहिए, और संयमी बनना चाहिए, और दिगंबर साधु बन करके दीक्षा ले लेना चाहिए। ध्यान शिविर से लौटकर घर आना ही नहीं चाहिए, वो तो आप करते नहीं। और ध्यान शिविर बराबर समय पर जाते हैं और बराबर समय पर भी, दोनों ही ठहराव रहता है पहले से ठहराव करके जाते हैं कि इतने इतने तारीख को लौट के आना है। और लौट के आना ये राग परिग्रह से राग है, कहां जा रहे हो? परिग्रह की ओर। 10 परिग्रह वही बुला रहे हैं, और लौट के नहीं जाते हैं तो हमको उठा के ले जाने के लिए घर वाले आएंगे कि आप क्या कर रहे हो, वैराग्य हो गया क्या, मुनि दीक्षा लिए क्या, संयमी हो गए क्या? वो तो उठा के ले जाने आएंगे, वो कहीं यहां तक न आए इसलिए घबराहट रही थी आपको। आप घर चले जाते, ज्यादा विकल्प करते हुए बैठे होंगे, क्योंकि 5 दिन ज्यादा रुक गए हम यहां ध्यान शिविर में। होता है कि नहीं होता है? घर वालों की चिंता हो जाती है, 5 दिन का ध्यान शिविर है तो 5 दिन के बाद घर वाले क्या कहते होंगे, क्या सोचते होंगे, जाना तो पड़ेगा, ये विचार आते हैं कि नहीं आते? तो यहां केवल ज्ञान कैसे होगा? मोहनी कर हो रहा है ना, हाँ कषाय मंद करने के लिए तो जाते हैं, पर क्षय करने के लिए जाओ हम ये कह रहे हैं। क्षय करने के लिए जाओ, मंद करने के लिए मत जाओ। मंद करोगे और फिर सोचोगे तो वो तीव्र होगा, और फिर अगले साल आओगे, अगले महीने जब भी रखा है उसी डेट पर आओगे। क्यों आओगे? मंद करने के लिए। फिर वहां जाकर के 5 दिन मंद किया, फिर तीव्र हो गया, तो ये कब तक करोगे ऐसा? इसको अनंत काल तक भी इस प्रकार मंद करने के उपशम श्रेणी का ध्यान है ये। उपशम श्रेणी टाइप से है ये। मंद करने के लिए जाते हो तो केवल ज्ञान नहीं होगा, और इसको इस प्रकार से अनंत काल तक भी करते रहो, मंद बनाए रखो उसको, होने वाला है क्या? तो रागादि भावों का क्षय करना पड़ेगा, संकल्प पूर्वक ये कहना पड़ेगा कि मैं लौट के नहीं आऊंगा, इस बार जाऊंगा तो। ये क्षय कहलाता है, एक शपक श्रेणी है। और वहां जाकर के मुनि बनो ना, संयम धारण करो। ध्यान शिविर में जाते हो तो कम से कम मुझे प्रतिमा लेना चाहिए, बाह्य परिग्रह से मोह ममता कम करनी चाहिए, कम से कम प्रतिमा तो ले आओ। वो भी नहीं होता तो फिर गए क्यों? तो आत्मा के ऊपर संस्कार डालने के लिए गए। तो आत्मा के ऊपर किस तरह से, कब तक संस्कार डालोगे ऐसा? जिंदगी भर क्या मंद करने के लिए जाओगे? मंदता का ही संस्कार डालना चाहते हो? हाँ, यदि शरीर में योग्यता है, शक्ति है, तो मंद मत करो। मंद करो, मंद करने के लिए कितने बार जाओ? 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार भी जाओ, लेकिन क्षय करने के लिए 1 बार निकलो तो सही, अगर योग्यता है तो अपने पास। हो जाएगा केवल ज्ञान, हो जाएगा वो अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, पर संयम का दृष्टिकोण रखो, मोह को क्षय करने का दृष्टिकोण रखो। आज हम लोगों के पास अवधि ज्ञान और मनापरे ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि